आज फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज हिंदी में मेरे साथ मिलके बोलिए, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसका इंग्लिश वर्जन है, वन शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड टू रिनाउंस अनट्रूथ। ये सूत्र केवल इस बात को नहीं बता रहा है कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए और ऑनेस्टी के साथ जीना चाहिए। ये जनरली हम बहुत सारे जगह सुनते हैं, पढ़ते हैं कि ऑनेस्ट होना चाहिए। सो दिस सूत्र इज नॉट ऑल अबाउट दैट ऑनेस्टी, समथिंग एल्स। इस नियम का जो भाव है कि व्यक्ति को सच को सुनना और सत्य को एक्सेप्ट करने के लिए उसके अंदर सामर्थ्य या एबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि ऑनेस्ट तो व्यक्ति तब होगा ना जब उसको पता ही चले क्या सच है, और सत्य को जानना और उसको एक्सेप्ट करना ये डिफरेंट थिंग है, और ऑनेस्ट होना डिफरेंट थिंग है। तो ऑनेस्ट होना तो जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है सच्चाई को, सच को जानना और उसको एक्सेप्ट करना। और साथ में ये जुड़ा हुआ है कि जब आप सत्य को एक्सेप्ट करेंगे तो जो झूठ है, जो सच नहीं है, उसको रिनाउंस करने के लिए भी हमारे अंदर वो कॉरेज, वो गट्स होना चाहिए। यजुर्वेद का ये बड़ा सुंदर मंत्र है, कहता है, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिहि अश्रद्धामनृते दधा अश्रद्धाम सत्य प्रजापतिहि। प्रजापति मतलब द लॉर्ड ऑफ क्रिएचर, जिसने संसार को बनाया, उस प्रजापति ने समझ के अच्छी तरह डिलिबरेटली उसने दो चीजें बनाई, बोला एक सत्य एक ट्रूथ, एक अनृत एक फॉल्सहुड झूठ। फिर उसने जो डिसबिलीव है उसको उसने फॉल्सहुड के साथ जोड़ा, और जो ट्रस्ट है वो ट्रूथ के साथ जोड़ा। जनरली वेद मंत्र बड़ा मेटाफोरिकल होते हैं, आप उसके वर्ड मीनिंग पर नहीं जाएंगे, उसके सेंस को समझना है कि जब से ह्यूमन रेस है, पैदा हुआ है, उसके साथ ही दो चीजें चलते हैं, एक सच और एक झूठ। सत्य में लोगों की श्रद्धा होती है, नेचुरली होती है, जो झूठे होते हैं उनमें लोगों की श्रद्धा नहीं होती है। तो ये मंत्र का सिंपल भाव है। सो ट्रूथफुल होना तो मुश्किल है, डेफिनेटली इट्स नॉट इजी टू बी प्योरली ऑनेस्ट और प्योरली ट्रूथफुल। पर प्रॉब्लम और भी है, ट्रूथफुल होने के लिए भी टू नो द ट्रूथ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। आप घर के अंदर घुसे, आपने कुछ देखा, कोई आपके घर में काम करने वाला साफ कर रहा था, तो आपने देखा कि आपकी सोने की रिंग रखी हुई है, तो वो उसको देख रही थी। आपको पता है कि ऑनेस्ट है, तो आप चले गए। शाम को आए तो आपकी रिंग नहीं थी, तो नहीं थी तो सबसे पहले आपका डाउट, किस परसेप्शन क्या बना कि उस जो घर में काम कर रही थी तो उसने उठाया होगा, ये परसेप्शन बना। सच है कि नहीं ना आपको पता नहीं है, तो सच ढूंढना पड़ता है, वो कारपेट के फाड़ना पड़ता है, उठाना पड़ता है, उसके अंदर से सच निकलता है। प्रॉब्लम हमारी है कि बिकॉज ऑफ लेजीनेस और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, या एबिलिटी नहीं होती है या दूसरे कारण से हम सत्य को जानने की कोशिश नहीं करते या इतना एफर्ट नहीं करते, फिर हम झूठ के साथ जीने की आदि बन जाते हैं। ये सूत्र कहता है कि लाइफ में लोगों को ये भी हैबिट करने की जरूरत है कि सच को जानना और जानने पर उसको एक्सेप्ट करना। ये एक्सेप्ट करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, उसकी डिस्कशन हम करेंगे। हमारे लाइफ में जनरली ये सिचुएशन रहता है, ये वाला आप देखेंगे स्लाइड, जितना ट्रूथ है करीब करीब उतना बिलीव होता है, और ट्रूथ और बिलीव में जो डिस्टेंस है वो भी बहुत बड़ा भारी डिस्टेंस है। हमारी जो ओवरऑल लाइफ है जिसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, वो इसीलिए कि ट्रूथ और बिलीव जो हम मानते हैं और जो सच है उनमें बड़ा अंतर होता है। हम जिस चीज को मानते हैं और वो सच भी है, इसकी परसेंटेज उतना ही है, मे बी 10-15%। और क्योंकि इंसान सत्य को जानना और जानने पर भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं जो लोग, उनके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम बना रहता है। अब सच क्या है? जब हम सच ढूंढने लगते हैं तो हमें वही सच लगता है जो मेजोरिटी सच मानता है। भेड़ चाल, जहां मैं पैदा हुआ हूं, जिस तरह के जिस या जहां मैं रहता हूं वहां के लोग जिस चीज को सच मानते हैं, मैं भी उसी को सच मानता हूं। जिसको वो खराब मानते हैं मैं उसको खराब मानता हूं। यूरोप में पले बढ़े तो आपको ये बचपन से सिखाया जाएगा, रेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर वेरी पुअर, वेरी डर्टी, डिसऑनेस्ट। तो हम उसी तरह के माइंडसेट लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब भारत में पैदा हुए, गांव में पैदा हुए, थोड़ा कम पढ़े लिखे तो आपको लगता है ये वेस्टर्न लोग, गोरे लोग सब म्लेच्छ होते हैं। म्लेच्छ का मतलब गंदे होते हैं, डर्टी होते हैं, बड़े ट्रिकी होते हैं, बदमाश होते हैं। तो वही नेचर लेकर पले बढ़े। अब दुनिया मेजोरिटी के साथ चलती है। हमने कहानी सुनी थी, एक भिखारी भीख मांगता था बेचारा, और उसका लाइफ में कोई था नहीं, अकेले फैमिली में अकेला था। तो जो भी दिन भर भीख मांगने के बाद लाता था शाम को, उसे कुछ हिस्सा वो बचा के रखता था, कुछ पैसे बचाता था। उसके पास एक तांबे का बर्तन था, और जब उसके पैसे कुछ ज्यादा हो जाते थे उसको बड़े नोट में या बड़े पैसे में कन्वर्ट करके बड़े कॉइन में, तो उसको वो तांबे के बर्तन में रखता था। एक दिन वो तांबे का बर्तन भर गया तो भिखारी ने सोचा अब क्या करूं, मैं तो भिखारी हूं, गरीब आदमी हूं, मेरे तो कोई है नहीं, इतना पैसा लेकर क्या करूंगा भाई। उसके लिए वही उतना बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत लोगों के लिए ट्रिलियंस भी कम पड़ जाता है, कुछ लोगों के लिए लोटे भर के पैसे भी ज्यादा हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट आवर ओन इंडिविजुअल चॉइस। तो उसके लिए वो लोटे भर पैसा बहुत ज्यादा लगा। बोले क्या करूंगा, उसका जिंदगी तो चल रही है, कोई बच्चे फैमिली में तो है नहीं। सोचा कि गरीब आदमी लाइफ में तो कभी मैंने कोई तीर्थ किया नहीं, कोई पुण्य किया नहीं, तो मैं तीर्थ करूंगा। तीर्थ समझते हैं पिलिग्रिमेज, कहां जाऊंगा। तो आइडिया लगा के सोच समझ के डिसाइड किया कि काशी जाऊंगा। अब वो काशी चला ट्रेन में बैठ के। अगले दिन सुबह सुबह अभी 3-4 बजे, अंधेरा है, काशी के रेलवे स्टेशन पर उतरा। उतरने के बाद सोचा तो अभी अभी तो रात अभी है, थोड़ी अंधेरा है, तो सबसे पहले मैं गंगा में जाता हूं, वहां नहाऊंगा धोऊंगा। लाइफ में पहली बार क्या, मेरे गांव में भी शायद अकेला मैं अकेला आदमी हूं जो गंगा में आया हूं, गरीब घर गांव का हूं। गांव वालों ने भी बहुत सारे जाते समय बोला भाई मेरे पिताजी के लिए भी पानी दे देना, मेरे माताजी को भी तर्पण कर देना, वगैरह वगैरह सबने बोला है। तो तो पहले गंगा में नहाऊंगा, सब तर्पण वगैरह करूंगा, फिर विश्वनाथ मंदिर जाऊंगा, दर्शन करूंगा। अंधेरा था थोड़ा हल्का फुल्का, तो वो गंगा नदी के किनारे गया। अभी तक कोई आया नहीं था, अकेला था क्योंकि अंधेरा था। अब नहाने से पहले सोचा कि ये मैं अपने जो, उसके पास तो बहुत कुछ था नहीं, थैला था उसमें हो सकता है गमछा होगा और तो कुछ होगा नहीं, वो तांबे का बर्तन था जिसमें पैसे थे। बोले इस तांबे को बर्तन को कहां रखूं मैं, सोचा अगर ऊपर रख के नहाने जाऊं और कोई चोर आकर ले जाए, फिर सोचा कि मैं रेत के नीचे उसको दबा देता हूं, फिर उसको लगा कि ये तो थोड़ा गिला गिला रेत है नदी के किनारे, वो पानी के कारण पता ही नहीं चलेगा कि कहां मैंने रखा, वो तो सब एक जैसा दिखेगा रेत में। तो बहुत सोचने के बाद उसने एक उपाय सोचा, उसने रेत में थोड़ा गड्ढा किया और अपने तांबे के बर्तन को उस गड्ढे में रख के उसको भर दिया, उसके ऊपर रेत का एक शिवलिंग बनाया, शिवलिंग शिव का लिंग बनाया रेत में, ऐसे बना बना के बना दिया। उसको लगा कि काशी है, लोगों की शिव भक्ति है, तो शिव का लिंग देखकर इसको कोई छुएगा नहीं, अब मेरा तांबे का बर्तन सेफ रहेगा, जब मैं नहा धोकर वापस आऊंगा ये मेरे लिए मार्क होगा कि ये शिवलिंग जो है इसी के नीचे मेरा तांबे का बर्तन है। नहाने चला गया पानी के अंदर, पहली बार गंगा में नहाने आया है, खूब मजे से नहा रहा है, तर्पण कर रहा है, और उसी के साथ साथ दूसरे भी कोई तीर्थ यात्री आया, तो वो आकर देखा, वो भी बाहर से ही आया है कोई दूसरा यात्री, दूसरे तीसरे चार पांच लोग आए, उन्होंने देखा कि गंगा नदी के किनारे कोई भी नहीं है, पानी के अंदर एक आदमी नहा रहा है और किनारे एक रेत का शिवलिंग बना हुआ है। तो बाहर से आए तीर्थ यात्री ने सोचा शायद यहां का ये ट्रेडिशन है, परंपरा है, शिवलिंग बनाने के बाद ही नहाते हैं रेत में, तभी पुण्य मिलेगा। तो उन्होंने भी अपना एक रेत का शिवलिंग बनाया और नहाने चले गए। लोग आते गए क्योंकि काशी तीर्थ नगरी है, रोज लाखों में बाहर से तीर्थ यात्री आते हैं, लोग आते गए, शिवलिंग देखा तो खुद शिवलिंग बनाते गए और नहाते गए। अभी सैकड़ों शिवलिंग बन चुके थे क्योंकि सैकड़ों लोग गंगा में नहा रहे थे। उस भिखारी ने अपना काम खत्म करके नहाना धोना, सूर्य को जल चढ़ाना, जो भी उनकी ट्रेडिशन में सब करके जब वापस आया, अपना तांबे का बर्तन ढूंढने के लिए वो देखता है तो सैकड़ों उसमें शिवलिंग बने हुए हैं और मेरा कौन सा पता कैसे चलेगा। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है क्योंकि अगर शिवलिंगों को तोड़ता है तो लोग कहेंगे नास्तिक है, धर्म विरोधी है, मारेंगे पिटेंगे, मॉब लिंचिंग होगी, पिटाई शुरू हो जाएगी, पापी है। और अगर शिवलिंगों को ना तोड़ू तो मेरा तो जिंदगी भर की कमाई गई। बेचारा सोचता रहा सोचता रहा, कोई रास्ता तो था नहीं क्योंकि पापा धर्म की बात है, बिलीव की बात है। आखिर में उसने वापस गया और वापस जाके जो एक श्लोक बोला, बोला गतानुगतिक लोक न लोक परमार्थिक, गंगा सैकत लिंगे नष्टम में ताम्र भाजनम। ये जो संसार है ना, लोक है, गतानुगतिक है, एक दूसरे को फॉलो करने वाले होते हैं, इसको अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं भेड़ चाल करना, एक के पीछे एक चलता है, किसी को पता नहीं क्यों वो करता है, ना किसी को भगवान में इंटरेस्ट है, ना किसी को धर्म में इंटरेस्ट है, बस इंटरेस्ट है तो दुनिया करती है, हम भी कर पड़ते हैं। इसीलिए हिंदू मंदिर नहीं जाते हैं क्योंकि मंदिर में श्रद्धा है, क्योंकि यही जाते रहे। अगर ब्रिटेन में पैदा होते, अमेरिका गोरे घर में पैदा होते तो चर्च जाते, अरब में पैदा, पाकिस्तान में होते तो मस्जिद जाते, पता कुछ नहीं ये मस्जिद में है क्या, मंदिर है क्यों, चर्च है क्यों, अच्छा है बुरा है, कौन सा सच है कौन सा बुरा है, हु केयर्स, बस दुनिया चलती है हम भी चलते, किसी को उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। उसका रिजल्ट क्या होता है, वो भिखारी के बात में कहता है, इसका परिणाम होता है और कुछ मिलता नहीं है, मेरे जिंदगी भर की जो पूंजी है कमाई है ये तांबे का बर्तन यही खो जाता है। तो हम सब इसी जो कंफर्टिंग लाइज के जोन में के पीछे चले रहते हैं लाइन में, क्योंकि सब वहीं चलते हैं, ट्रूथ है या नहीं है कितना भी है, क्योंकि दूसरे लोग फॉलो नहीं करते हैं, हम भी रास्ता छोड़ करके चले जाते हैं। तो भावे की सच वो नहीं होना चाहिए, सच का सच मानने की वो पैरामीटर नहीं होना चाहिए कि ज्यादातर लोग उसको सच मानते हैं। सच अगर ज्यादातर लोगों के मानने को सच होता, और उसी का रिजल्ट है कि गैलीलियो कोपरनिकस को जेल में रहना पड़ा, क्योंकि उस समय ये प्रिविलेंट थॉट था यूरोप में या चर्चों में, पोप को जब चलती थी कि धरती जो है वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, जो स्टार्स हैं जो सन है वो उसके चारों तरफ घूमते हैं, आपने कुछ सच बोला वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि पूरी दुनिया उसी को नहीं मानती है। तो देवियों सज्जनों, जनरली जो कॉमन लोगों की जो सच होता है इट्स बेस्ड ऑन इग्नोरेंस, और दूसरा है कि भेड़ चाल। सच तो ढूंढना पड़ता है। इसी तरह हमारे फैमिली में भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका भी कारण है कि हम अपनी सच्चाई को ना देख के दूसरे घर में क्या होता है उसको फॉलो करते हैं। पति पत्नी की लड़ाई में भी पत्नी पति को ताना मारती है, देखो शर्मा जी की पति कैसा है और तू नहीं है। पति पत्नी को ताना मारता है कि देखो गुप्ता जी घर की बीवी कैसी है, पर प्रॉब्लम है कि गुप्ता जी घर की माहौल अलग है, शर्मा जी के घर का माहौल है, और तुम्हारे घर की माहौल अलग है, और तुम इंडिविजुअली भी अलग हो। तुम्हें अपनी सच जब तक नहीं दिखे दूसरे को नकल करो, घर में तो झगड़ा होगा ही। मैं जब तक ये ना जानू कि मेरी क्या कमी है क्या अच्छाई है, उसकी क्या कमी है अच्छाई है, तो झगड़ा होगा। अगला पॉइंट आता है जो सत्य को मानने का, वॉइस ऑफ कॉन्शियस, हमारे अंदर की आवाज को भी हम, हमारे शास्त्र भी रिकमेंड करते हैं, जब आपको कुछ ना समझ में आए क्या सच है क्या झूठ है तो आप अपने अंदर की आवाज सुनो। पर हमेशा अंदर की आवाज सच नहीं होता है, कि अंदर की आवाज भी जो बनता है वो उस एनवायरमेंट में ट्रेंड होकर के आता है, जो पैदा होने से लेकर अभी तक जिस तरह की ट्रेनिंग अपब्रिंगिंग एक्सपीरियंस मेरा हुआ है, या पैदा होने से पहले लास्ट लाइफ में जिस तरह संस्कार लेकर मैं आया हूं, उसी से मेरा सच और झूठ और तुम्हारा सच झूठ अलग अलग होता है। एक व्यक्ति एक खास तरह के रिलीजियस बैकग्राउंड में पला बड़ा है तो वो जानवरों को काटता है, काट बिल्कुल दर्द दे दे करके काटता है, कहता है ये पुण्य है ये हलाल है, उसको उसे पुण्य दिखता है। एक दूसरे बैकग्राउंड में पला बड़ा जैन है वैष्णव है, वो उसको भयानक पाप समझता है। दोनों में प्रॉब्लम कहां पर है, वो उसको सच मानता है इसको सच है कि जो जिस तरह की ट्रेनिंग और अपब्रिंगिंग लेकर के आगे बढ़ा है। तो इसलिए हमेशा जो इनर वॉइस है वो हमेशा सच नहीं होता, शुरू शुरू में होता है जब आप बिल्कुल ब्लैंक होते बच्चे होते हैं, जब तक आपको फैमिली का दुनिया का अपने रिलीजन का आपकी सोसाइटी का आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया जाता तब तक आपकी इनर वॉइस क्लीन होता है क्लियर होता है, तो वो फिर जेन्युइन होता है। बाद में तो वो इनर वॉइस होता ही नहीं है, वो तो एक तरह का ट्रेंड वॉइस होता है, जिस तरह की ट्रेनिंग है उस तरह के हम मानते हैं करते हैं। इसीलिए ये कहना कि उसने गलत काम किया पर उसका इंटेंशन बड़ा इनोसेंट था, ये कोई मोरालिटी का पैरामीटर नहीं हो सकता। ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट फिलोसोफर मानते हैं कि इग्नोरेंस इज नॉट अपोजिट ऑफ नॉलेज, एक्चुअली इग्नोरेंस इज इट्सेल्फ इज ए क्राइम। अज्ञान बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि अज्ञान के कारण आप बहुत बड़े बड़े गलत काम कर जाते हो ये सोच के कि ये सही है। सोचिए, हम अपनी सोसाइटी की बात ले, दूसरों की चर्चा क्यों करें। जिन जमानों में 200, 300, 400 साल पहले जिन जमानों में पति के मर जाने पर पत्नी को भी उसी आग में जलाया जाता था, क्योंकि वो सती होगी वो पुण्य स्वर्ग मिलेगा, तो ये अज्ञान, ये जो इनोसेंसी है, इन्होंने कोई किसी को परेशान करने के लिए तो ऐसा नहीं किया, ये तो उनको लगा कि ये बिचारी औरत का भला होगा, ये अगर जिंदा रहेगी तो पापी है, अगर आग में इसको डाल दिया जाए पति के चूल्हे में तो इसको पुण्य मिलेगा, ये तो बड़े अच्छे भाव के साथ मारा। पर क्या वो इनोसेंसी सचमुच अच्छी चीज है? इससे कितने लोगों को तकलीफ होता है। इसीलिए ये इनोसेंसी कोई एक्सक्यूज नहीं होता कभी, या मोरालिटी का पैरामीटर में नहीं आता, बड़ा इनोसेंट आदमी है हो गया उससे, नहीं, उसको सीखना जरूरी है। इसीलिए आप घर में बच्चों को सिखाते हो आग में हाथ मत डालो या किसी पर आग मत डालो। बच्चा अगर आग से घर जला दे और आप कहो कि वो इनोसेंट था, ऐसी इनोसेंसी तो खतरनाक है। उस इनोसेंसी को दूर करने की जरूरत है, किससे? नॉलेज से, ट्रेनिंग से। मतलब नॉलेज क्या मतलब? सत्य को जानना, उसको ये सच्चाई बताना जरूरी है, या वो खुद अगर बड़ा है खुद एक्सपीरियंस करे, या अगर छोटा है पेरेंट्स उसको बताएं सच क्या है झूठ क्या है। आग खतरनाक है ये सच है तो उसको पता होता तो नहीं लगाता। तो इसलिए बड़ा अच्छा इंटेंशन के सारी दुनिया में देवियों सज्जनों जितने भी पाप होते हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा, मे बी मोर देन 50% जो पाप का मतलब बुरे काम होते हैं, उस बुरे कर्मों का 50% हिस्सा ये इसी कारण होते हैं, शुद्ध भाव के साथ। मैं तो बड़े पवित्र भाव के साथ करता हूं क्योंकि उससे पुण्य मिलेगा पाप मिलेगा। जैसे पशुओं को मारना बलि चढ़ाना ईश्वर के नाम पर, हिंदुओं में भी पहाड़ी, मोस्टली पहाड़ी एरिया में, ईस्टर्न इंडिया में, नेपाल में, हिमाचल में, आसाम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल वगैरह में, आपको इवन हिंदुओं में भी, जैसे मुसलमान हलाल करते हैं ईद के दिन, अलग अलग त्योहारों में ये बकरी भेड़, मतलब जो खुद खाते हैं वही चीजें, ऐसा नहीं कि कुत्ता को बलि चढ़ाता, आज तक हमने नहीं देखा कोई कुत्ता को बलि चढ़ाता है, नहीं चढ़ाता, जो खुद खाते हैं वो भगवान के सामने बलि चढ़ाते हैं। क्यों? ये स्वर्ग गया। ऐसी इनोसेंसी कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करती है। ये जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, वो क्या चीज है? आप कहते हो ये गलत है, वो कहते हैं इससे हमें स्वर्ग मिलता है, जन्नत मिलता है, इनोसेंसी है। ये जो सत्य को ना जानना और एक्सेप्ट ना करना, इससे कितना नुकसान होता है इंडिविजुअली भी और सोशियली भी, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन। इसीलिए इनोसेंसी कभी मोरालिटी का कोई पैरामीटर नहीं हो सकता। तो फिर सत्य क्या चीज है? दो डेफिनेशन आपको मिलेगा, एक योग दर्शन का है सत्यम यथार्थे वांग मनसे, जैसा आपकी माइंड है, जिस तरह आपके मन में विचार चल रहा है, जिस तरह का थॉट प्रोसेस है, वही अगर आप बोलते हैं वही करते हैं, मतलब आपकी माइंड, आपकी जो बोलते हैं फिजिकली मेंटली ओरली जो कुछ भी करते हैं, अगर ये तीनों एक जैसा है तो वो सच है। So, ये डेफिनेशन सत्य का है, पर बेसिकली सत्य से ज्यादा ऑनेस्टी का है। ऑनेस्ट आदमी किसको कहेंगे जिसके मन में वाणी में विचार में एक जैसा पन हो, मतलब हिपोक्रेट नहीं है, कुछ सोचता कुछ करता है कुछ बोलता है ऐसा नहीं है। पर वो सच क्या है? सत्य बोलना और करना के लिए जो मुश्किल काम है कि पहले तो सत्य को जाना जाए। तो सच क्या है? तो कहते हैं यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चेति। सच तुम्हारी ह्यूमिशियली आइडिया से नहीं है कि ये मैंने समझ लिया सच है तो सच नहीं, सच की परख होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में उसके लिए 8 तरह के टूल्स बताए कि ये इन इन चीजों से आपको पता करने की जरूरत है कि जो आपको पता है वो सच है कि नहीं है। इसमें 3 चीजें दिया उन 8 में से, मैं 3 पर ही फोकस करता हूं। जो आपने अपने इंद्रियों से जाना, आंखों से कानों से नाकों से, मतलब जो आपने डायरेक्ट परसेप्ट किया सामने से जाना। नंबर 2 इन्फरेंस। इन्फरेंस एक बहुत ही लॉजिकल टर्म है, ऐसा नहीं कि रैंडमली आपने कुछ इन्फरेंट कर लिया, उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। वो प्रॉपर कंडीशन के साथ जब आप इन्फरेंस करते हैं, जैसे एग्जांपल है कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप आपको पता है, हर कॉज एंड हर इफेक्ट के जो बीच के जो रिलेशनशिप है अलग अलग होता है, सब जगह अलग अलग है। जैसे माँ बाप पेरेंट्स और बच्चा, ये भी कॉज एंड इफेक्ट है। माँ बाप कॉज है और इफेक्ट बच्चा है। इन दोनों के रिलेशनशिप में एक तरह की यूनिवर्सियल ट्रूथ है, वो है कि बिना माँ बाप के बच्चा पैदा नहीं हो सकता, मतलब इंसान में नहीं पशु पक्षी सब में, इवन जो अंडा भी देता है। इवन आप कहेंगे आजकल टेस्ट ट्यूब बच्चा है या क्लोनिंग से बच्चा पैदा होता है, स्टिल उसका कोई ना कोई माँ बाप है जहां से वो क्लोनिंग के लिए टिश्यू लिया गया है वगैरह वगैरह डीएनए वगैरह लिया गया है, हो ही नहीं सकता। आप दुनिया में कभी किसी भी प्राणी को देखते हैं, लिविंग बींग को, लाइफ को देखते हैं, आप उसके पेरेंट्स को बिना देखे भी आप ये जान सकते हैं कि इसका कोई पेरेंट्स है, जिंदा है नहीं है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। क्यों? ये एक एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है बच्चा और मां बाप के बीच में। जहां जहां आप धुआं देखते हैं आपको लगता है कि वहां आग है, तो क्योंकि आपने देखा घर में रसोई से लेकर जहां भी आपने देखा, जहां जहां भी धुआं हुआ है वहां आग होता है। तो आप एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप के बेस पर दुनिया में जहां भी आप धुआं देखते हैं आप डर जाते हैं या दूसरे को अलर्ट कर देते हैं कि वहां आग होगा। ये रिलेशनशिप है इफेक्ट से कॉज को जानने का। ध्यान देखिए, यहां कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप मां बाप और बच्चे की तरह नहीं है। पर ऐसा नहीं हो सकता है कि जहां जहां आग आप देखते हैं वहां वहां आपको धुआं भी आप समझ सकते हैं। आजकल आपकी गैस चूल्हा है वहां धुआं नहीं होता है, तो जहां आग है वहां धुआं नहीं हो सकता, जहां धुआं होता है वहां आग जरूर हो सकता है। तो ये रिलेशनशिप कहते हैं अनुमान प्रमाण, इसको इन्फरेंस के द्वारा सत्य को जानने की कोशिश करना। तीसरा जो सबसे ज्यादा हम अपने लाइफ में यूज करते हैं, बाय टेस्टिमोनी ऑफ रिलायबल एक्सपर्ट। आप हिस्ट्री के बारे में जानते हैं बा और किसी चीज के बारे में जानते हैं तो आप बुक्स पढ़ते हैं, लोगों की सुनते हैं, चर्चा करते हैं, उसमें भी रिलायबिलिटी जरूरी है। जो कोई भी बुक उठा लिया पढ़ लिया वो सच है जरूरी नहीं है, कितना भी महान ग्रंथ हो उसको आप कभी कभी अपने रियल लाइफ से उसको मैच कराने की जरूरत है। तो सत्य को जानने के अपने अपने तरीके हैं। ये संस्कृत के श्लोक देख के मत सोचिए कि ये बड़ा मुश्किल काम है, डे टू डे लाइफ में आप अपने दिमाग को यूज करेंगे, किताब ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे समझेंगे तो सच समझ में आता है। अब प्रॉब्लम है कि सत्य को तो हमने जाना, सच तो मैं जाना, पर प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम अगला प्रॉब्लम शुरू होता है उस सत्य को एक्सेप्ट करना। और ये जो आज का सूत्र है आर्य समाज का कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में हमेशा तैयार रहना चाहिए, ये यहीं से शुरू होता है। सच मुझे पता है क्या है, द प्रॉब्लम इज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट। आप ट्रैफिक में, आपको ऑफिस पहुंचना है, अपने जीपीएस चेक किया, 30 मिनट्स में आप ऑफिस पहुंच सकते हैं। आप 35 मिनट्स हाथ में रख के निकले, 9:30 बजे आपको पहुंचना है, 30 मिनट्स लगेगा, तब भी आपने 8:55 को आपने जर्निंग शुरू की और रास्ते में आपको हर ट्रैफिक पर रेड लाइट ज्यादा पड़ने लग गए। बड़ी बड़ी ट्रैफिक के कभी कभी एक एक रेड लाइट पर कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, 2-5 मिनट एक्स्ट्रा लगने लग गए। अब आप इरिटेट होने लगे, इरिटेट होने लगे, आप झुंझलाने लगेंगे, आप गाड़ी को क्या चलाएंगे, किस तरह रिएक्ट करेंगे, सब होने लगेगा। दो ऑप्शन है, या तो आप इस रियलिटी को मान लीजिए, ट्रूथ को मान लीजिए कि ट्रैफिक इस रोड में जाम है, मेरे लिए किसी भी हालत पर 9:30 तक पहुंचा नहीं जा सकता। वंस यू एक्सेप्टेड द ट्रूथ, देन देर आर सो मेनी ऑप्शंस विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। फिर आप रास्ता खंगा लेंगे, मैं इस तरह जाऊं, दूसरे तरफ जाऊं, या फोन करके बताऊं 9:30 में पहुंचना एब्सोल्युटली मुश्किल है। आप कोई ना कोई ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। प्रॉब्लम कहां होता है, आप 15 मिनट से देख रहे हैं कि ट्रैफिक जाम है, आपकी इरिटेशन लेवल बढ़ रहा है, स्टिल आप कहीं अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है ट्रैफिक खुल जाएगी, अभी चली जाएगी, अभी चली जाएगी। वो पता है हमारे रिलेशनशिप में भी ज्यादातर यही प्रॉब्लम होता है। मैं कुछ दिन पहले एक शो देख रहा था, फैमिली काउंसलिंग का शो, जहां पति पत्नी आते हैं, उनकी जो डिस्प्यूट है उसका समाधान करते हैं, सेपरेट होना है तो उनको मिलाने की कोशिश की जाती है। एक कपल, बड़ा यंग कपल है, 30-35 के बीच के, एजुकेटेड हैं दोनों आए, जो काउंसलिंग करने वाले उनसे काफी समझ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे ने क्या एक दूसरे के लिए खराब किया, क्या किया, दोनों रो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, सब चल रहा है शुरुआती दौर में चलता जैसे। तो आप उन पति पत्नी दोनों ने ये डिसाइड करके वहां फैमिली काउंसिलर के पास आए कि हमें हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है और हम उसको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, हमारा एक बच्चा 5 साल का है, रहना चाहते हैं। ये सच तो वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारे बीच में डिस्प्यूट है। सो ये जो सच को एक्सेप्ट करना, एक स्टेप पार कर गए सल्यूशन का। प्रॉब्लम है कि सेकंड सच है, अब वो बैठे आधे घंटे एक घंटे से एक दूसरे की बुराई करने में लग गए, तो सल्यूशन तो चाहिए। काउंसिलर बार बार पूछता है, चलो वो पुरानी बातें हुई, अब आपको मिलना है, साथ रहना है कि रहना है, रहना है। तो कुछ आगे का रास्ता तो देखें, क्या आपको चाहिए कि वो ठीक कर दे तो आप रह सकते हो, वो ठीक कर दे तो आप रह सकते हो। फिर बुराइयां शुरू होती है, काउंसलर पूछता है, अच्छा मुझे बताइए 5 अच्छी चीजें जो आपकी स्पाउस में था या है। लड़की को पूछा, कुछ भी नहीं, एक भी नहीं है। ओके, लड़के को पूछा, कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है। चलो ठीक है, कोई अच्छा है उसमें नहीं है। 7 साल तक रहे, शादी के शुरू 6 महीने में तो कुछ तो अच्छा दिखा होगा, कुछ भी नहीं है। ओके, अच्छा बताओ कि आप तो इंसान हो, आपसे भी कुछ गलतियां हुई होगी, आप में कोई गलतियां है, 5 गलतियां बताओ। लड़की ने बताया, मेरी पहली गलती है कि मैं बहुत इनोसेंट हूं, ये जो कहते हैं मैं मान जाती हूं। दूसरी गलती है कि इसके मां बाप जब मेरे ऊपर गालियां वगैरह जो भी करते हैं मैं सब सह जाती हूं। तीसरी गलती है कि ये मुझे पैसा नहीं देते, मुझे टॉर्चर करते हैं, मेरी गलती है। तो काउंसलर ने बोला, ये तो सब तुम अपनी तारीफ कर रहे हो, कोई बुराई है? कुछ भी नहीं है। पति को पूछा, तुम अपनी तो कुछ बुराई मान लो, मेरे पास कोई भी बुराई नहीं है। देवियों सज्जनों, घंटों लगने के बाद 3-4 दिन तक टीवी का शो था, अलग अलग 3-4 एपिसोड के बाद भी लास्ट में फैमिली काउंसलरों ने बोला इनका मेल मिलाप हमारे हाथ में नहीं है। द बेसिक प्रॉब्लम इज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। द ट्रूथ इज आई मे बी रॉन्ग, ही और शी मे बी राइट इन समवेयर। हमारी लाइफ में भी यही प्रॉब्लम है। जब भी प्रॉब्लम घर में बढ़े, समझ लीजिए दूसरे से ज्यादा खुद के बारे में सोचिए, कहीं मेरे कारण से तो कहीं कुछ नहीं है, दूसरे का तो है, डेफिनेटली है, तभी तो प्रॉब्लम है, पर क्या मेरे अंदर कुछ है। द मोमेंट यू फाइंड योर ओन फॉल्ट यू विल फाइंड द रे ऑफ सॉल्यूशन। देवियों सज्जनों, सत्य को मान लेना, रियलिटी को एक्सेप्ट करने का अर्थ यह नहीं है कि यू लाइक इट और यू डिसलाइक इट। अर्थ है कि आपने सत्य को माना, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आपकी सोच में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी समझ में कुछ प्रॉब्लम है, मेरी एबिलिटी में कुछ कमजोरी है। इस सत्य को मानने से, मानते ही आपके आधे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का रास्ता फिर ऑप्शंस वहीं से खोलते हैं। पर जब तक ये नहीं होता तो फिर चेंजेस नहीं हो सकता। और आता कहां से? डे टू डे लाइफ में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके लिए जरूरी है, या तो कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं, या दूसरों के ओपिनियन सुनते हैं, या लोगों को देखते हैं, या फैक्ट्स या डाटा चेक करते हैं। ये सारे हमेशा सच नहीं होता है, उसको हमारे ब्रेन में डालना पड़ता है, उसको कहते हैं लॉजिक। अपने जो ईश्वर क्या दिया हुआ इनबिल्ट लॉजिकल माइंड है उसको कभी कभी यूज करने की जरूरत है, उसके बैकग्राउंड में रीजनिंग ढूंढने की जरूरत है। और जो इंट्यूशन है, जो अपना जो वॉइस ऑफ कॉन्शियस है, ये तीनों को मिलाकर जिसको हम जनरली रैशनल थिंकिंग कहते हैं, वो जब लगाते हैं तब हम साउंड कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। जिन लोग रिलीजन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में और बहुत सारे चीजों के बारे में ये रैशनल थिंकिंग में ताला लगा देते हैं, जो रिपब्लिक है वो रिपब्लिक है, सारे डेमोक्रेटिक का हर चीज गलत, डेमोक्रेटिक के लिए रिपब्लिकन का सब गलत। हमारे रिलीजन के मामले में भी मोर देन 70% जब हमारे रैशनल थिंकिंग से परे होता है, हमें बताने वाले भी उठपटांग बताते हैं और हम उसको मान लेते हैं विदाउट यूजिंग आवर रैशनल थिंकिंग है। और उसका रिजल्ट क्या होता है और वो क्यों होता है? क्योंकि हम सत्य को सीखने के लिए जो हमारे अंदर एबिलिटी नहीं होती है, या तो ही हम मानकर चलते हैं कि मुझे पता है, जो मैं जानता हूं वही सच है, मुझे और कुछ नहीं सीखना, या फैमिली सोसाइटी का प्रेशर रहता है कि मैं कंप्रोमाइज करता हूं। एक छोटी सी स्टोरी कह के आज की बात कुछ खत्म करेंगे। बहुत तो आपके लाइफ में काफी एनलाइटनमेंट लाएगा स्टोरी। एक राज्य में एक राजा थे और राज्य अच्छा राज्य था, ठीक ठाक किंगडम था, तो वहां एक चोर था। तो चोरी करता था, बार बार पकड़ा जाता था, चोरी करता था, पकड़ा जाता था। एक दिन एक गांव में वो चोरी करते हुए पकड़ा गया और गांव वालों ने उसको पकड़ के उसकी नाक काट दिया, नाक काट दिया, घाव सूख गया, अब उसके नाक कट गया तो पहचान बना रहा। तो उसको शर्म के मारे वो गांव छोड़ के भाग गया, बहुत दूर भाग गया, एक दूसरे राज्य में गया, किंगडम में, दूसरे राज्य में गया और जंगल में छुप के रहा, क्योंकि गांव में जाओ कहीं भी जाओ पब्लिक में तो लोग पूछते हैं नाक कैसे कटा, गंदा दिखता है या नाक कैसे कटा, तो मुश्किल होता था। तो उसने बोला उससे बचने का एक उपाय है, तो उसने गया एक जंगल में, किसी दूसरे अनजान राज्य में गांव के पास एक जंगल में एक झोपड़ी डाली, भगवा कपड़े पहना और ऐसे बैठने लगा। लोग आने लगे, कोई एक आधा वादा जंगल में भटकता हुआ, भाई आप कौन हो, यहां क्यों बैठे हो, ये नाक कैसे कटा है? बोला वो बहुत सीक्रेट है, बहुत मिस्ट्री है उसमें, बताओ। एक शर्त पर बताऊंगा, अगर तुम किसी को बताओगे नहीं, क्योंकि वो मिस्टीरियस है और मैं बहुत पहुंचा हुआ साधु हूं, तो बताओ। ऐसा है कि मुझे ना ईश्वर का दर्शन हुआ है, मुझे ईश्वर का दर्शन हुआ है। और ईश्वर दर्शन करते समय मुझे कहा कि तभी तुम्हें दर्शन होगा जब मैं समाधिस्थ था, जब तुम्हारा नाक कटेगा, इसलिए नाक काटना पड़ा ईश्वर के दर्शन के लिए। उसको लगा ये बकवास कर रहा है, ज्यादा बोल रहा है, गांव में बहुत लोगों को बताया ये झूठ बोलता है यार। पर प्रॉब्लम क्या है कि वहां भी बहुत कुछ लोग होते हैं, हमारे आप में से भी एक आधा मिल जाएंगे। उनको लगा दो चार लोगों को, कहीं सच तो नहीं कि नाक कटने से सचमुच ईश्वर मिला हो। वो आए उस बाबा के पास, उसका नाम था नाककटा बाबा। बोले बाबा जी हमें भी ईश्वर देखना है। बोले कोई नहीं, नाक काटना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आदमी ने अपना नाक कटवाया, नाक कटाने के बाद एक हफ्ते गए, नाक तो सूख गया। बोले बाबा ईश्वर तो दिखे नहीं। बोले सुन, ईश्वर वगैरह कुछ नहीं दिखता, ईश्वर फिश्वर नाक काटने से। तो फिर तुमने मेरा नाक काट दिया, मैं सारे दुनिया को बोलूंगा कि तुमने मेरे नाक काट दिया। तो बोलोगे तो क्या करोगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तू ईश्वर देखने के लिए नाक कटवाने गया था, मजाक तेरी भी उड़ाएंगे, तो क्या करो? कुछ नहीं, सबको बोलो कि ईश्वर मिला नाक कटवाने से। देवियों सज्जनों, शुरू शुरू में तो एक आधा भक्त बने, बाद में दो चार पांच दस साल में एक राज्य में हजारों लोग मिले जो नाक कट के घूम रहे थे। मंत्री के पास राज्य राजभवन में भी पहुंचा, राजा को पता चला कि मेरे राज्य में सैकड़ों हजारों लोग आत्मज्ञानी हैं, ईश्वर को पा चुके हैं और मैं ही मूर्ख बैठा हूं। मंत्री ने कहा कि नहीं, मैं राजा काटने से पहले मुझे आत्मज्ञानी बनना है। वो भी गया नाक कटवा के आया, पर कंडीशन यही था, किसी को बताना नहीं कि तुम्हें ईश्वर नहीं मिला। अपनी शर्म किसको बताए। आज उस राज्य में, मतलब जब स्टोरी लिखने वाले ने लिखा कि उस राज्य में राजा तक भी नाक कटवा दिया, ज्यादातर लोग जिन्होंने नाक कटवा चुके थे, और सब नाक काटने वालों को पता था कि ईश्वर नाक कटने से नहीं मिलता, पर ज्यादातर राज्य नाक कटवा राज्य बना हुआ था। हम सबकी यही हालत है, हम अपनी झूठ को छुपाने के लिए सच एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं, तो कभी नाक कटवाते हैं, कभी पैसा बर्बाद करते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम करते हैं। इसी तरह सच को एक्सेप्ट ना करने से प्रॉब्लम होता है। कुछ चीजें अगले बार और चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही है। ओम शांति शांति। थैंक यू, नमस्ते।